शुरू हो रहा है और 17 सूरत है। अब ये सूरह बनी इसराइल, इसका नाम अल इसरा भी है, और जितने अरब नुस्खे हैं कुरान के वहाँ आपको बनी इसराइल के नाम से ये सूरत नहीं मिलेगी, अल इसरा के नाम से मिलेगी। और इसकी जो पहली आयत है इसमें कुरानी सबूत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का, कुरानी सबूत है। तो लिहाजा आप इसमें देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के मौजमा से वहाँ मस्जिद अक्सा ले जाया गया, जिसका डिस्टेंस 1500 किलोमीटर से ज्यादा है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। और उस जमाने में वो सफर को 40 दिन लगते थे, अगर कोई घोड़े ऊंटों पे अगर चले जाता तो उस जमाने में 40 दिन लगते थे, और रात के एक हिस्से में ले जाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फिर ले जाने से पहले 3 साइंटिफिक चीजें हुई जो आज हमको समझने के लिए बहुत बहुत ही आसान है। एक तो ये कि आपका सीना चीरा गया, दिल निकाला गया, आबे जमजम से धोया गया, जिब्रील अलैहि सलाम ने ये काम किया। अब वो जमाने में लोग मानते नहीं थे कि भाई ऐसा कैसा सीना खोल दिए आपको। ये मैं समझता हूँ मस्जिद के 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई 3-4 हॉस्पिटल्स मिलते हैं जहाँ बाईपास सर्जरी होती, जहाँ सीना खोलते हैं। आज कोई बड़ी बात नहीं रही है, ये एडवांस किताब है बहुत अल्लाह ताला की है। तो अब बाईपास सर्जरी, सीना खोलना, दिल निकालना, वॉश करना, वॉल्व चेंज करना, रिप्लेस करना, कोई बड़ी बात नहीं रही। तो इंसान अल्लाह ताला ने जिसको बनाया वो जब कर सकता है तो अल्लाह ताला को करने में क्या मजा आता था। चलिए हो गया। फिर दूसरी ये कि 1500 किलोमीटर एक रात के हिस्से में, फिर ये इसरा है। फिर मेराज क्या है? मस्जिद अक्सा से आसमानों की आलम बरजख और जन्नत और दोजख की सैर करवाई गई, अल्लाह ताला से बातचीत हुई, नमाजें फर्ज हुई, 5 नमाजें। तो दो पार्ट्स हैं। तो इतनी देर में जो है जाके आ जाना। तो सेकंड साइंटिफिक पॉइंट ये है कि आप रॉकेट्स भेज रहे हैं, अभी एक प्लूटो को जो है वो सर्च के लिए जाने वाला है एक रॉकेट, हबल टेलीस्कोप माउंट कर दिए हैं आप, दुनिया भर के रॉकेट्स हैं, टेलीकास्ट पूरा हो रहा है, सैटेलाइट्स पूरे लगे हुए हैं। आप कर सकते हैं, अल्लाह ताला नहीं कर सकता। साइंटिफिक पॉइंट्स, सेकंड पॉइंट स्पेस ट्रैवल, यानी बाई वो सीना खोल के सर्जरी करना, फर्स्ट साइंटिफिक पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपके स्पेस ट्रैवल। थर्ड पॉइंट वेलोसिटी। वो जमाने में वेलोसिटी का आइडिया ही नहीं था। देखिए बुर्राख लाया गया, बुर्राख जो है ओरिजिनली लफ्ज बर्फ से है, बर्फ इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। बिजली की रफ्तार जो है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रहता है, एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर चले जाते हैं, एक सेकंड। तो ये हाईली साइंटिफिक, मेरा इस पर रेगुलर टॉक है, मेरा जन साइंस पे रेगुलर टॉक होता था एक जमाने में। तो यानी ऐसे साइंटिफिक पॉइंट्स हैं जो वो जमाने में किसी को समझ में नहीं आए, तो झगड़ा खड़े रह गया कि भाई जिस्मानी मेराज थी या रूहानी मेराज थी। वो सवाल ही नहीं पैदा होता, जिस्मानी मेराज थी। आज आप इंसान का सीना खोल रहे हैं, हाँ, दिल निकाल रहे हैं, दिल डाल रहे हैं, दुनिया भर का तमाम चीजें हो रहे हैं, स्पेस ट्रैवल हो रही, वेलोसिटीज इतने बढ़ गए हैं आपके, ये तमाम चीजें हो रही। तो जमाने में लोग समझे नहीं। तो ये बैकग्राउंड से जो है आप ये पहली आयत को समझने की कोशिश करिए कि फिर अब ये दो मसाजिद की अहमियत ये हुई कि मक्के मौजामा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बसाया अपने बेटे, और मस्जिद अक्सा में इसहाक अलैहिस्सलाम को बसाया। तो ये मस्जिद, दो मस्जिदों की अहमियत भी मालूम हो गई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। और पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को रात के एक हिस्से में, यानी मस्जिद हराम काबे शरीफ से ले गया मस्जिद अक्सा, यानी दूर की मस्जिद बैतुल मुकद्दस के मस्जिद में, जिसके माहौल को अल्लाह ताला ने बरकतों बरकतें यानी अच्छी चीजों में बढ़ोतरी उस वहां नाजिल की थी, ताकि वो अपने बंदे को अपनी निशानियां बताए। एक निशानी तो ये हुई कि भाई 40 डेज का सफर आप पार्ट ऑफ द नाइट में कवर करें, फिर उसके बाद में आलम बरजख की सैर करवाई गई आपको, फिर जन्नत और दोजख बताए गए, उसी में जो मालिक दोजख के इंचार्ज हैं हमारे लिए रेलेवेंट है वो, तो उन्होंने कहा कि मैंने 7वां हिस्सा आपको नहीं बताया दोजख का, तो बोले क्यों नहीं बताया, तो बोले नहीं आपको गम होगा इसलिए नहीं बताया कि इसमें आपकी उम्मत के वो लोग होंगे जो बगैर तौबा के मर गए हैं, बगैर तौबा के मर गए हैं। तो यहां तलखीन ये हो रही है कि तौबा करते रहो, माफी चाहो अल्लाह ताला से, माफी चाह के जो गलतियां हो उसको करेक्ट करके जो अपनी इसलाह कर लो। तो ये तीन चीजें जो है बताई गई, ये निशानियां बताई गई। तो अब ये फिर जो अब डिटेल्स ये आते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराख लेके आए, बुराख लफ्ज बर्क से है, नेचुरली उसकी जो वेलोसिटी, हाँ रिवायतों में ये आया है कि बुराख का एक एक कदम नजर की दूरी तक पड़ता था, तो नजर वेलोसिटी ऑफ लाइट से जाती, अगर कुछ हिंड्रेंस नहीं है तो यूं देखा तो मैं 300,000 किलोमीटर देखता हूं। देखिए अब सूरज है, यहां से 93 मिलियन माइल्स है सूरज, सूरज की रोशनी जमीन पे आने के लिए 7 मिनट लगते, सूरज तुलू हो जाता मगर रोशनी नहीं आती, रोशनी आने को टाइम लगता। क्या साइंटिफिक है ये, हमारे पास ममनून वक्त है। सूरज गुरूब हो जाता मगर दिखते रहता क्योंकि अभी रोशनी उससे आते रहती, मगरिब के वक्त ये हमारा ममनून वक्त है। ये है साहब कुरान और हदीस हमारे पास, इसकी कदर नहीं करें हम, इतनी साइंस इसमें भरी हुई अल्ट्रा मॉडर्न चीज थी इसकी हम कदर नहीं करें। तो ये आप हमारे बंदे को ये तमाम चीजें दिखाएं। फिर अब इसमें जो बात आती है सूरह बकरा की आखिरी आयात कुछ दी गई तोहफतन, और फिर नमाज का तोहफा दिया गया। तो मैं इस पे हमेशा ये बोलता हूं कि भाई देखिए आप ऑफिस के कोई हेड हैं तो होता ये कि आप कोई इंपॉर्टेंट कोई फाइल है, आप बोल देते भाई फलाने साहब को लेके जाके दे दो, अगर कोई अहम बात हुई तो आप बोलते कि उनको बुलाओ। तो तमाम अहकाम जमीन पे भेजे गए जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए, लेकिन नमाज का वाहिद हुक्म था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे बुला के जो है नमाज का हुक्म दिया गया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के बाद नमाज फर्ज हुई तो उनके उम्मतियों में से नमाज किसी पे माफ कैसा हो सकती है? लॉजिकल बात है, बात हमारे जहन में आना, अल्लाह ताला बिठा दे। तो फिर कहा कि इन्नहु हुवा समीउल बसीर, और बेशक वो जो है सुनने वाला देखने वाला है। वह आते ना मूसल किताब, अभी देखिए यहां 60वीं आयत में फिर एक विजन की बात आ रही है, और सूरह नजम की 12वीं से 18वीं आयत तक जो है, 12वीं से हाँ 18वीं आयत तक जमीन से सफर आसमान तक, जमीन मस्जिद अक्सा से आसमानों तक चले जो चले गया सूरह नजम में आ रहा है। दो हिस्से हैं मेराज के, एक मक्के मौजमा से बैतुल मुकद्दस जेरूसलम में, और फिर जेरूसलम से आसमानों तक, वो सूरह नजम में उसका जिक्र आ रहा है। अब यहां हुआ ये कि जो रिवायतों में आ रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत की, आपने तमाम नबियों की इमामत की। तो अब ये बात आपकी अहमियत के समझ में आती है कि अब आपका जो पूरा लेजिस्लेशन है कुरान का वो ता क़यामत कायम रहने वाला है, इसके बाद में और कोई नया दिन नहीं आने वाला है। और ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो वो इमाम मेहदी के पीछे जो है नमाज पढ़ेंगे, बोलेंगे कि नहीं आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हैं, आपका हक है इमामत करने का, वो शरीयत पे हैं। तो ये फाइनलाइजेशन हो गया। वह आता है ना मूसल किताब व जालना हुदल बनी इसराइल, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी यानी तौरात दी और उसको रास्ता बताया बनी इसराइल को। ये सारे इंसानों के लिए नहीं है, कुरान में जैसा आया कि हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए कुरान हिदायत है, या सिर्फ बनी इसराइल के लिए जो है तौरात हिदायत थी। अल्लाह तत्तखिज़ु मिन दूनी वकीला, के मेरे अलावा किसी और पे भरोसा मत करो। तौरात का जो थीम था वो यही था, ये हमारे पास भी वही बात है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना। ज़ुर्रियता मन हमलना मा नूह, ये बनी इसराइल कौन थे? उन्हीं लोगों की औलाद थे जिनको हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में बचा लिया था, उन्हीं लोगों के साथ थे। इन्नहु काना अब्दन शकूरा, और ये नूह अलैहिस्सलाम जो थे हमारे गुलाम थे और शुक्र करने वाले बंदे थे, एक्सेप्ट करते थे। वह खजैना इला बनी इसराइल फिल किताबी लितुफ्सिदुन्ना फिल अर्ज़ी मरतैनी वला तालुन्ना उलुवन कबीरा, और हमने किताब में यानी लोहे महफूज जो पूरी कायनात का प्रोग्राम लिखा हुआ है उसमें लिख दिया था कि बनी इसराइल लतुफ्सिदुन्ना, डेफिनेटली फसाद करेंगे, یقیناً ضرور فساد کریں گے, یہ کنسٹرکشن ایسا ہے, دو وقت فساد کریں گے اور جو ہے اپنے حد سے نکل جائیں گے, بہت زیادہ حد سے نکلتے ہوئے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْأُولَى أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي الْبَأْسِ شَدِيدًا فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. تو جب پہلا وقت آیا ان کے وعدے کا پورا کرنے کا, تو ہم نے ان کے خلاف ایسے بہت ہی طاقتور لوگوں کو کھڑا کیا ان پہ حملہ کرنے کے لیے, اور یہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے. تو یہاں بات یہ آئی کہ یہ دو وقت جو ہے نافرمانی کریں گے, دو وقت حد سے نکلیں گے, اور دو وقت اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان کو پنش کروائے گا, مار کھلائے گا. ذرا ہم اپنے آپ پہ غور کریں چلتے چلتے, یہ ہم کو وقتاً فوقتاً جو چلتے رہتا, یہاں بھی چلتا, عراق میں بھی چل رہا, افغانستان میں بھی چل رہا, جیروسلم میں بھی چل رہا, یہ انسانوں سے مار کھلایا جا رہا ہے. ہماری جونی چلتی اس پہ, ہم سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ایک تو نیچرل کلیمیٹی سے مارتے, ایک اس طریقے سے مار کھلاتے. تو مجھے ریفرنس بعض وقت پولیس ایکشن کا یاد آتا کہ بھئی ہماری کیا حالت تھی اس سے پہلے, کچھ عجیب قسم کی کیفیت ہو گئی چیزیں. یعنی قرآن حدیث کدھر ہی چلے گئے تھے, قرآن حدیث سے ہٹ کے تمام چیزوں پہ جو ہے وہ ہو گئے تھے, جو دیندار تھے, جو نہیں تھے وہ تو بالکل ہی نہیں تھے. تو ہوا یہ کہ حکومت چھین لی گئی, تو بنی اسرائیل بھی توریت کو چھوڑ دیے تھے, دو وقت انہوں نے ایسا کیا. تو اب پہلی دفعہ جو ہے بیبیلون کا شہنشاہ 600 BC میں بیبیلون کا شہنشاہ جو ہے ان پہ حملہ کر دیا, کر کے ان کے گھروں میں گھس گئے لوگ. وکانا وعدن مفولا, اور جو وعدہ تھا وہ پورا کیا گیا. ثم رددنا لکم الکرۃن علیہم, اور پھر اس کے بعد میں ہم نے تم کو دوسری بار جو ہے حکومت دی تمہارے ہاتھ میں. وہ امددناکم باموالہم و بنین و جعلنا کم اکثر نفیرہ, اور پھر ہم نے تمہاری مدد کی مال سے اور بیٹوں سے, اور ہم نے تم کو بہت بڑی جو ہے پارٹی بنا دی, یہودیوں کو بہت بڑی پارٹی بنا دی. تو اس وقت ہوا یہ کہ یہ پرشیا کا جو بادشاہ تھا وہ آ کے بیبیلون پہ حملہ کیا, اور پھر یہ جو بنی اسرائیلوں کو قیدی کر کے رکھا تھا ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ تم جیروسلم میں جا کے بس. تو دوسرا موقع دیا گیا ان کو. دیکھیے ہر قوم کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں. اب یہ موقع کائے کا دینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ان کے جو رسول کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرتے یا نہیں کرتے, یہ موقع دیا جا رہا ہے. ہم بھی اسی موقع سے اس وقت گزر رہے ہیں مگر اس کو ہم سمجھ نہیں رہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اور اگر تم کوئی بھلائی کرتے ہو تو تم اپنے آپ کے لیے بھلائی کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. بلکہ ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ اگر ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں ہوگا, اور ساری مخلوق اگر عبادت کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو اگر تم کوئی بھلائی کرتے ہو تو تم اپنے لیے کرتے ہو, نماز کے لیے آئے ہو, دھوپ بڑھ گئی, گرمی بڑھ گئی, اس کے باوجود نماز کے لیے آ رہے ہیں, جماعت کی پابندی ہو رہی ہے, تو تم اپنے لیے کر رہے ہیں. وہ ان اسا تم فلاح, اور اگر تم برائی کرتے ہو تو اس کی ذمہ داری بھی تمہارے پہ, یو آر ریسپانسبل فار دیٹ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, پھر دوسرا وعدہ جب کا وقت جب آ گیا. لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ, تو ہم نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور پھر یہ لوگ مسجد میں داخل ہو گئے جیسے کہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے. آج مسجدوں کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے, نہیں سمجھ رہے ہیں ہماری سزا ہو رہی ہے, ہم اپنی سزا کو نہیں سمجھ رہے, مساجد کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے, چو طرف مسجدوں میں گھس جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, توڑ پھوڑ ہو رہا ہے, سب ہی ہو رہا ہے. تو بات سمجھنا ہے کہ یہ قرآن پڑھ کے ہم لیسن ہی نہیں لے رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب قوموں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑا تو اس طریقے کی حرکت ہوئی ان لوگوں کے ساتھ, لوگوں سے پٹوا دیا اللہ تعالیٰ. تو پھر وہ مسجد میں داخل ہو گئے جیسے کہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے. ولی یتبرو ما علو تکبیرا, تاکہ وہ جس پہ فتح حاصل کیے, جس کو کانکر کیے, اس کو بالکل ہی تباہ کر دیا. دوسرے وعدے کے وقت یہ ہوا. اسا ربکم ان یرحمکم, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے. دیکھیے بنی اسرائیل کا کیوں سنا رہے ہیں, کیونکہ ایک حدیث میں بات آئی کہ بنی اسرائیل نے جو جو کیا ہے میری امت کرے گی, ان کے 72 فرقے ہیں تو میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, کافی تفصیل دی ہیں اس حدیث میں. تو ویسے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ آج اگر کوئی نبی آتا تو مسلمان ویسی ایڈریس کیے جاتے جو اہل کتاب یا مشرقین یا منافق ایڈریس کیے جاتے, अब लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती बोलने के लिए। तो ये बात समझना है कि हो सकता है कि तुम्हारा पालने वाला मालिक तुम पे रहम करे, वो इन उत्तम उदना, और अगर तुम फिर अपने नाफरमानी के तरफ पलटो तो फिर हम भी पलटेंगे। फेयर डील, तुम हमारी बात मानो हम तुम्हारी बात मानेंगे, तुम हमारी बात से पलटोगे तो फिर हम भी जो है पलट जाएंगे, हम भी सजा देने के लिए पलट जाएंगे। वो जालना जहन्नमा लिल काफिरीना हसीरा, और जहन्नम काफिरीन के लिए हमने खैदखाना बनाया। नहीं, काफिरीन के लिए बनाया, क्यों गिर गिर के जाते हो जहन्नम के तरफ? ऐसा कि हदीस का मफहूम मुझे बड़ा ठीक से याद नहीं, अल्लाह माफ करे, कि कुछ ऐसा आ रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि तुम लोग जहन्नुम में गिरना चाहते हो, मैं पकड़ पकड़ के तुम लोगों को खींच रहा हूं। तो यहां ये बात आ रही है कि ये काफिरों के लिए जहन्नुम जो है कैदखाना बनाया गया है। अब हम उसमें क्यों जाते हैं? इन हाजा इन हाजल खुराना यहदी लिल्लती या अखवाम, ये जो कुरान है बेशक ये रास्ता दिखाती है किस तरह, जो सब में सीधा है। ये सुपरलेटिव टेंस है अखवाम, ये कुरान जो है ऐसा रास्ता दिखाती है जो सब में सीधा है। वो युबशिरुल मुमिनीना लदीना यामलूना सालेहात, और उन लोगों को जो ईमान लाते हैं यानी वो लोग जो अमले साले करते हैं उनको खुशखबरी देती है। क्या? अन्ना लहुम अजरन कबीरा, कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। तो कंडीशन आ गया, क्या कंडीशन आ गया? जो युबशिरुल मुमिनीना लदीना यामलूना सालेहात, ईमान लाए और अमल साले करे। ईमान क्या है? रिवाइज कर लीजिए, अल्लाह पे ईमान, फरिश्तों पे ईमान, रसूलों पे ईमान, किताबों पे ईमान, मरने के बाद जी उठने और हिसाब किताब पे ईमान, तकदीर पे ईमान, पक्का ईमान हो, पक्का यकीन हो कि ये सब चीजें होने वाली है। और अमल साले क्या है? कि कुरान पे वैसे ही अमल करें जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अति अल्लाह व अति रसूल, जिसने रसूल की इत्तबा की उसने अल्लाह की इत्तबा की। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल की मेरी इत्तबा करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो। तो ये बात हमारे जहन में रहना है कि कंडीशन है जन्नत के लिए, कंडीशन है कि मोमिन होना और फिर अमले साले करना। अमले साले क्या है? कुरान पे वैसे ही अमल करना जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो इनके लिए जो है बड़ा अजर है। वो अन्न लदीना ला यूमिनूना बिल आखिरा, और वो लोग जो आखिरत पे ईमान नहीं लाते, यकीन नहीं रखते, वो बिल आखिरती हम यूकिनून, सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं, जो आखिरत पे यकीन रखते हैं। भाई देखिए, ईमान का मतलब अमन में आ जाना, ईमान का एक मतलब यकीन का भी है, अल्लाह पे ईमान, यकीन है कि अल्लाह ताला हैं और अपने पूरे सिफात के साथ हैं, जो हमको थोड़े से मालूम है, बहुत से हमको नहीं मालूम। फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला इस वक्त घेरे में है, अल्लाह ताला की एग्जीक्यूटिव है, वो पूरा कारोबार कर रहे हैं, रसूल है इंसानों में से नबी और पैगंबर को उठाया, हमारे जन्नत का रास्ता बताने के लिए उनको भेजा, किताबें भेजी। अब ये जिंदगी इम्तिहान है, कुरान में जो भी है उस पर यकीन हो, और फिर इस जिंदगी के इम्तिहान में कामयाब होने के लिए वैसी अमल करना पड़ेगा जैसा कुरान में बताया और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो फिर नतीजे पे यकीन, कि नतीजा निकलेगा इसका, और अगर ये नतीजे पे यकीन नहीं है तो फिर बात खत्म हो गई। देखिए, मैं अक्सर एक सवाल करता हूँ, माशाल्लाह स्टूडेंट्स काफी रहते हैं, कि भाई अगर किसी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी अनाउंस कर दे कि ये साल हम बीए, बीएससी, एमएससी, एमए तमाम एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं निकालेंगे, तो कितने बेवकूफ बच्चे हैं जो इम्तिहान देंगे। भाई हर बच्चे को ये यकीन है कि रिजल्ट निकलेगा, जब ही तो इतनी मेहनत कर रहा है ना, खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, लेटा रात भर जाग रहा, पढ़ रहा, कि यकीन है कि रिजल्ट निकलेगा, नतीजा निकलेगा, मुझे ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग की कुछ भी डिग्री मिलेगी। मगर हमारे आमाल से ऐसा मालूम ही नहीं होता कि हमको आखिरत पे यकीन है, मालूम ही नहीं होता कि आखिरत पे यकीन है। जैसा एक छोटी सी मिसाल, बड़ी मिसाल है छोटी सी, क्या कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अजान होती थी तो आपके चेहरे का रंग बदल जाता था। तो लोग पूछते कि भाई आप इतना क्यों डर जाते हैं, तो बोले तुमको पता है किसके सामने जाके खड़े रहना है। और मैं समझता हूं आज का मुसलमान जितना रिलैक्स नमाज में रहता कोई और चीज में नहीं रहता, फुर्सत से सोचते रहता था सब, इत्मीनान से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, चलो सजदे में सो गए, फिर अल्लाह अकबर बोले, फौरन अल्लाह अकबर। ये हमारी हालत है। तो आखिरत में यकीन जिसको होता है, नहीं मालूम मौत कब आएगी, नहीं बोल सकते ना, वला तमूतुन्ना इल्ला वा अंतुम मुस्लिमून, तुम मत मारो मगर ये कि तुम मुसलमान हो, तो मौत मालूम ही नहीं। हर लम्हा जो है ये रहना, और आखिरत पे जो है यकीन होना है। वो अन्ना लदीना ला युमिनूना बिल आखिरती आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, जो आखिरत पे ईमान नहीं लाते, यकीन नहीं करते, उनके लिए हमने तकलीफ दे अजाब तैयार करके रखा है। तब इन ऐसे जो दर्स होते हैं उसमें अपना जायजा लेना पड़ेगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये आयत हम ही पे बैठी है और हम समझ रहे हैं जो है काफिरों के बारे में बोल रहे हैं। हमको आखिरत पे यकीन नहीं है। अगर आखिरत पे यकीन होता तो हमारा नक्शा ही कुछ अलग अलग होता था। तो जरा अपना जायजा लेना कि भाई ये है नहीं है यकीन ये चीजों पे। तो अल्लाह ताला बस ये चीजें हमको ठीक तरीके से समझा दे।